તારીખ 10/6/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 194 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 42
વચનામૃત પત્રાંક 194 ચાલતા પહેલા પેરેગ્રાફ જો ચલ ગયા उसमें वो बात आई कि किसी भी जीव को मोक्ष मार्ग में आने के पहले ज्ञानी पुरुष का पहचान होनी चाहिए, ज्ञानी पुरुष की पहचान आनी चाहिए, पहचान पूर्वक पूर्ण विश्वास आना चाहिए, सम्यक प्रतीति का अर्थ हुई है यथार्थ पहचान पूर्वक उत्पन्न हुआ पूर्ण विश्वास, क्योंकि यहाँ प्रतीति मैंने श्रद्धा ज्ञानी की श्रद्धा को हो, लेकिन पहचान हुए वो ज्ञान की पर्याय है, विश्वास आता है तो ये श्रद्धा प्रधान ज्ञान की पर्याय है, क्योंकि दृष्टि तो श्रद्धा तो सलटी नहीं उल्टी है, इसलिए यहाँ श्रद्धा का परिणमन कार्यकारी नहीं है। ऐसे जीव को शुरू से ले ले मैं, ठीक है सर। ये पैराग्राफ एक प्रश्न का उत्तर रूप चल रहा है, प्रश्न वो उठाया है कृपालु देव ने स्वयं ने कि जीव को मार्ग नहीं मिला, इसका क्या कारण। विशेष रूप से प्रश्न को समझाया जाए तो अनंत काल से अब तक, अनादि से अब तक अनंत काल बीता, कितना उस अनंत काल में धर्म के क्षेत्र में सभी प्रकार के व्रत संयम की क्रिया करने के बावजूद भी और अनेक शास्त्र के अध्ययन करने के बावजूद भी अनंत करोड़ प्रयत्न किया, करोड़ के अनंत प्रयत्न किया, फिर भी जीव को मार्ग नहीं मिला, इसका क्या कारण। कौन सी ऐसी एक बात रह गई कि जिससे मार्ग नहीं मिला। तो एक ही कारण है कि उनको सत्पुरुष की पहचान नहीं हुई। तो यहाँ ज्ञानी पुरुष सत्पुरुष उतना ही नहीं कह करके उनको बहुमान से ऐसे कहते हैं कि जो निरंतर भाव अप्रतिबद्धता से विचरते हैं, जो अन्य पदार्थ में प्रतिबद्ध होते हैं वो ज्ञानी नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो भिन्नत्व होने से हुए हैं, भिन्न पदार्थों से अनादि से अभिन्नत्व अनुभव किया था वो छूट गया, पर भिन्न पदार्थ को भिन्न रूप में अनुभव करते हैं, इसलिए उनको भाव प्रतिबंध नहीं है, भाव प्रतिबंध नहीं होने का यही कारण है, उपकारी बनता है। तो प्रतिबद्धता को पाते हैं या प्रतिबद्धता को नहीं पाते हैं, श्वेतांबर में तो वहां तक कथा आएगी कि भगवान महावीर स्वामी निर्वाण में चले गए तो गौतम स्वामी रोने लग गए, अरे ज्ञानी पुरुष को भी प्रतिबद्धता नहीं होती है तो गणधर को तो होगी ही कहां से, उनको चारित्र मोह का थोड़ा लगाव था, अल्प, कितना, बहुत अल्प, वो भी छूट गया, भगवान निर्वाण पधारने से वो भी छूट गया, एकदम विरक्त परिणाम होते ही केवल ज्ञान ले लिया उसी दिन, 24 घंटे में केवल ज्ञान ले लिया, जाओ 24 घंटे क्या लगाए, बाद में तुरंत ही लिया है, इधर भगवान निर्वाण को गए वो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, तुरंत ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, तो उतना भी उपयोग जाने का फिर उनको स्थान नहीं रहा। अनंतानु मंदिर और दर्शन मोहनी गया तो तीन चौकड़ी का कोई हिसाब नहीं है, वहाँ 25% और 75% नहीं गिना जाता। सैन्य में कोई राजा को मारते हैं तो फिर सैन्य में कितने आदमी बाकी रहे वो देखने में नहीं आता।
राजा को मार दिया
सब सारा सैन्य है वो शरणागति स्वीकारने वाले हैं, वो तो शरणागति में आ जाएंगे। तो आपने राजा को मार दिया, अभी हमारा क्या बूता है, हमको नहीं मरना है, हमको जिंदा रहने दो, हम आपके शरण में आ जाएंगे। किसी को जो निरंतर भाव प्रतिबद्धता से विचरते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद के प्रति, ज्ञानी पुरुष के प्रति नहीं लिया, ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद के प्रति देखो कहाँ बैठता है। ज्ञानी पुरुष के प्रति प्रेम आया वो नहीं बोले, चरणारविंद के प्रति प्रेम आए बिना और अचल प्रतीति हुए बिना, सम्यक प्रतीति हुए बिना, आए बिना सत्स्वरूप की मैंने अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, अपने आत्मस्वरूप का अनुभव किसी को नहीं होता। तीनों काल में ये बात है ऐसा कहेंगे और आने पर अवश्य वह मुमुक्षु जिसके चरणारविंद की सेवा उसने की है उसकी दशा को प्राप्त होता है। क्या बात किया कि ज्ञानी पुरुष मिले हैं तो उनको अवश्य सत्स्वरूप की प्राप्ति स्वानुभव होता ही है। ज्ञानी पुरुष मिलने पर भी प्राप्ति नहीं हुई तो मान लिया जा, मानना पड़े, मानना ही होगा कि उसने पहचान नहीं की है, पर उसको अचल प्रेम आया भी नहीं है। पर उसके चरणारविंद की सेवा नहीं की है। भले गुरुदेव को आरदान करते वक्त उनके चरण धोते थे, हाँ जितनी दफे आरदान दिया होगा उतनी दफे तो चरण धोए होंगे। हाँ नमस्कार करते वक्त भी चरण छूते हैं, चरण स्पर्श करते कि नहीं करते, फिर भी उसके चरणारविंद के प्रति अचल प्रेम हुआ नहीं था, पर सही पहचान आई नहीं थी, ये बात पक्की है। आई तो अवश्य उनको प्राप्ति होगी होगी और होगी, सम्यक प्रतीति आई, अचल प्रेम हुआ और स्वानुभव होगा कि नहीं होगा ऐसा नहीं है। नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ है, कारण नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ, कारण हुआ तो कार्य होगा, होगा और होगा ही, ये नियमबद्ध है।
चरणारविंद जो शब्द रखा है इसमें क्या मतलब है, मर्द है चरणारविंद लिया
है, ऐसा है सारे शरीर में मस्तक है वो उत्कृष्ट अंग है और पैर है वो निकृष्ट अंग है। ये ऊपर रहता है, ये जमीन से धूली से छूटा हुआ नीचे रहता है, गंदा भी होता है, तो उनको इतनी गरज है, मुमुक्षु को आत्मार्थ को उतनी गरज है कि भले ही पैर गंदा हो इनकी चरण रज मेरे मस्तक में लगनी चाहिए, मेरा उत्कृष्ट अंग इसका निष्कृष्ट अंग, ठीक ज्ञानी का निकृष्ट अंग और अपना उत्कृष्ट अंग, उनकी चरण रज को माथे लगाता है, ऐसी बात है ठीक।
तो वाणी की उपासना करने की बात तो आती है,
हाँ
चरण की उपासना,
चरण की उपासना यहाँ तो लिया है, चरणारविंद, चरण कमल, चरण को भी विशेषण दिया कमल का, अरविंद मैंने कमल, चरण कमल ऐसा कहते हैं, चरण कमल भी बोलते हैं, चरणारविंद भी बोलते हैं, दोनों बात बोलते हैं।
तो भी
रह गए और ओलखान नहीं हुआ तो नहीं होती है। ओलखान होने के लिए तो योग्यता चाहिए। क्षेत्र से नजदीक रहने से ओलखान हो जाती है ऐसा भी नहीं है। ओलखान मैंने पहचान, गुजराती में उसको ओलखान कहते हैं। कोई क्षेत्र से समीप रहने से पहचान हो जाती है ऐसा नहीं है, या ज्यादा काल समीप रहने से पहचान हो जाती है ऐसा भी नहीं है। सुगानी जी को एक ही घंटे में पहचान हुई, एक दिन में नहीं, एक दिन में तो अनुभव हुआ था, पहचान तो एक ही घंटे में हुई है, पहले घंटे में हुई है, पहले प्रवचन में हुई है। देखो क्या कारण है, जब योग्यता आती है तब पहचान आती है, चाहे एक घंटा हो चाहे 50 साल हो साथ में रहने का। नहीं पहचान, 50 साल भी गुरुदेव के साथ में रहने वाले होंगे लेकिन पहचान नहीं हुई तो नहीं हुई। इसका कारण यही है कि अपनी योग्यता पहचानने की नहीं है,
हमारी योग्यता नहीं है कि हमें पहचानने के, ऐसा संतोष करके बैठ जाना चाहिए क्या?
ये बात तो इसलिए चर्चित की जाती है कि हमारी योग्यता नहीं है तो कैसे हमारी योग्यता बने, इसलिए ये बात है। ये बात अपने से, अपने माथे से निकाल देने के लिए नहीं है, माथे लेने के लिए है, निकाल देने के लिए नहीं है, है? संतोष करने के लिए भी नहीं है और उसको निग्लेक्ट करने के लिए, गौण करने के लिए भी नहीं है। तो चलो भाई अपनी योग्यता नहीं है क्या करें, खाओ पियो और सो जाओ आराम से, नींद आ जाएगी बराबर। तो निश्चिंत होने के नहीं लिए नहीं है, चिंतित होने के लिए ये बात है। क्या ये बात क्यों चर्चा में लेते हैं अपन, कि अगर हम इस विषय में चिंतित नहीं हो तो चिंतित हो जाना चाहिए, चिंतित होंगे तो योग्यता आएगी, अगर इसकी चिंता ही नहीं तो योग्यता भी नहीं आएगी।
प्रकृति को देने के लिए क्या करें, हमारी प्रकृति ऐसा करके
ऐसा भी नहीं चले। प्रकृति तो दुश्मन है हमारी, प्रकृति मैंने हमारा दुश्मन तो ऐसा ही है कि जिसको हम गले लगा के फिरते हैं, ऐसा लेना है क्या? तो मारेगा, ऐसा नहीं चलता है। चिंतित होना चाहिए, बहुत खेद और बहुत दुख होना चाहिए, चाहे कितना भी रोना आ जाए लेकिन होना तो ऐसा एक दफे चाहिए, चाहिए और चाहिए। ये भी सीधी सादी बात है स्वानुभव और सम्यक दर्शन के लिए, स्वरूप प्राप्ति के लिए सीधी सादी बात है कि हमें क्या करना, हमें शास्त्र पढ़ना, कौन सा शास्त्र पढ़ना, समयसार पढ़ना, किस महात्मा के वचनामृत को पढ़ना, वो बात नहीं किया। उपवास करना, व्रत नियम संयम करना, वो भी बात नहीं किया, और दया दान यात्रा करने का भी बात नहीं कर किया, और फलाना मंत्र का जप करना, पंच परमेश्वर मंत्र का जप करना, उत्कृष्ट मंत्र है, वो भी नहीं किया। ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद की सेवा करना बस वही किया। अवश्य मिलती है क्या, सर्व सब ज्ञानियों ने इस मार्ग का सेवन किया है, सेवन करते हैं और सेवन करेंगे। जो भी ज्ञानी हुए उसने ऐसा ही किया है, जो हो रहे हैं ऐसा ही कर रहे हैं, जो होंगे ऐसा ही करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे उसको ज्ञान होगा नहीं, ऐसा कहते हैं। ठीक सीधी बात वो है। इससे हमें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये अपना सबूत देते हैं कि हमारा सबूत है कि हमको ज्ञान प्राप्ति इस प्रकार से हुई थी। इसलिए अगर विश्व में किसी को भी होगी या हुई हो, उसी प्रकार से, दूसरे प्रकार से हो सकती है पर यही वास्तविकता है। क्योंकि जो अनादि से अनजाना है, ऐसा अंतर्मुख होने का जो उपाय, तो स्वतः किसी को पता चलता नहीं, अपने आप किसी को पता नहीं चलता है। पर पता चलता तो धर्म के क्षेत्र में क्रियाकांड करने में कोई कसर नहीं रखी, शास्त्र पढ़ने में भी कोई कसर नहीं रखे, मिल जाता, लेकिन मिलता नहीं है। ध्यान का प्रैक्टिस करे तो किसका ध्यान करोगे? वो ध्यान ध्यान नहीं है, अनेक प्रकार के तरंग रूप ध्यान है। सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप है। आया कि नहीं आया? हाँ, ये तो चलता ही है। चतुर्थ गुण स्थान के पहले आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, दो ही ध्यान है, तीसरा धर्म ध्यान है
नहीं।
शुक्ल ध्यान का तो विचार करने की भी जगह नहीं है। वर्तमान में इसी मार्ग से होती है और भविष्य काल में भी ज्ञान प्राप्ति का यही एक मार्ग है, ऐसा लेना। जब ये बात हमारे सामने स्पष्ट आती है तो फिर हमें दूसरा विकल्प या शंका उठानी चाहिए
नहीं।
जब कृपालु देव अपने अनुभव से ये बात प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने, तो हमें दूसरा कौन सा विकल्प करने की आवश्यकता है? हमें कोई दूसरा विकल्प करना चाहिए
नहीं।
यही क्रम है, यही एकमात्र उपाय है, दूसरा उपाय ही नहीं है ना। जब दूसरा उपाय है ही नहीं तो फिर इसके विषय में सोचे क्या? और सर्वशास्त्रों का बोध लक्ष्य देखा जाए तो यही है कि हमारा अनुभव भी बोलता है और सभी ज्ञानियों का शास्त्र भी यही बोलता है। मैं बोलता हूं नहीं, सभी ज्ञानी वही बोल रहे हैं, वही कह रहे हैं। वो आया तिपनगा था नियम सार के तिपनगा था। मैं सत्पुरुष को अंतरंग निमित्त कहा है। नियम सार जैसे शास्त्र में, वो तो स्वान वो त्रिकाली का कारण परमात्मा के भावना का ग्रंथ है, वहां सत्पुरुष को अंतरंग निमित्त लिया है। देखो और जो कोई भी प्राणी छूटना चाहता है वो अखंड वृत्ति से इसी मार्ग का आराधन करे। इसी मार्ग का जो आराधन नहीं करता है वो छूटना भी नहीं चाहता है, यहां से उल्टा निकलता है, अनर्पित निकलता है। छूटना चाहता है तो यही मार्ग का सेवन करे, अनर्पित निकलता है। कि नहीं, वो मार्ग का सेवन नहीं करता है तो छूटना चाहता भी नहीं है। उसको अभी बंधन में पड़ना है, छूटना नहीं है, ये बात जरूर है। इस मार्ग का आराधन किए बिना जीव के अनादि काल से परिभ्रमण किया है। सब पहलू से स्पष्ट करते हैं कि इसी मार्ग का आराधन किए बिना ही जीव का परिभ्रमण चालू रहा है, अगर उतना कर लेता तो उसका परिभ्रमण चालू रहता नहीं। जब तक जीव का स्वच्छंद रूपी अंधत्व है वो इसलिए लेते हैं कि दूसरा दूसरा किया इसका क्या, तो कि स्वच्छंद से किया है, ज्ञानी की आज्ञा में रह करके कुछ नहीं किया है। जो भी क्रिया करनी है वो ज्ञानी की आज्ञा से करो, कहने का ये मतलब है, वरना स्वच्छंद हो जाएगा। अपने आप करने जाओगे तो स्वच्छंद हो जाएगा। जब तक जीव का स्वच्छंद रूपी अंधत्व है तब तक इस मार्ग का दर्शन नहीं होता। ये भी बहुत सुंदर बात किया है कि जिनको ऐसी सूझ नहीं आती कि मुझे ज्ञानी के मार्ग में चलना चाहिए, मेरे अभिप्राय से मेरी मनमानी करनी नहीं चाहिए, ऐसा जिनके सूझ नहीं है वो तो स्वच्छंद में पड़ा है। वो तो कहाँ पड़ा है? स्वच्छंद में पड़ा है, और इसलिए उसको इस मार्ग की सूझ नहीं आती, दर्शन नहीं होता, मतलब सूझ नहीं आती। देखो तो योग्यता क्या काम करती है, ये बात हजारों लाखों जीव पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आज भी हजारों लोग पढ़ते हैं, फिर भी जिसका ध्यान जाता है वो योग्यता वाला है, जिसका ध्यान नहीं जाता है इसकी योग्यता नहीं है, वो पढ़ते ही रहेंगे, इसी को ही पढ़ते रहेंगे। जैसे कृपाल देव ने एक दिया, स्लोगन दिया, मंत्र दिया, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, एक पंक्ति दिया। तो आत्मभावना तो भाए नहीं, और इस पंक्ति की धुन लगा दे तो दो दो घंटा, तीन तीन घंटा बोलते ही रहे, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। लहेगा क्या केवल ज्ञान? ये धुन लगाना यही कार्य की विधि पद्धति है, ऐसा करने से ग्रहित मिथ्यात होगा। क्या होगा? ग्रहित मिथ्यात होगा।
हाँ,
साधन की भूल होगी, कार्य पद्धति की भूल होगी, ग्रहित मिथ्यात हो जाएगा। भूलेंगे क्या? कृपालु देव के वचन को। करेंगे क्या? मिथ्यात को दृढ़ जा, ये गड़बड़ होती है। इसलिए पत्र तो यह पढ़ेगा, एक बार पढ़ा, दस बार पढ़ा, सौ बार पढ़ा, हजार बार पढ़ा, लेकिन जो पढ़ने में जो उपदेश थे उसका अनुसरण किया नहीं, उपदेश तो पढ़ा सुना और अमलीकरण नहीं किया। जाओ पढ़ते ही रहा, पढ़ते ही रहा। क्यों पढ़ता है? कि बस पढ़ने के लिए पढ़ता है, बार बार पढ़ना चाहिए इसलिए पढ़ते हैं, वो जो पढ़ने का विषय उसको दृढ़ करने के लिए पढ़ते हैं, अमल करने में कुछ नहीं। तो ये सब पढ़ना बेकार है, वो एक धुन लगा दी ऐसी बात हो गई, उसको मार्ग का दर्शन भी नहीं होता। अंधत्व को दूर करने के लिए जीव इस मार्ग का विचार करें, तो स्वच्छंद दूर करने के लिए क्या करना कि इस मार्ग का विचार करें कि कैसे सत्पुरुष को पहचाना जाए कि जिससे हमें उसके प्रति अचल प्रेम आए बिना रहे नहीं, वो कैसे पहचाना जाए इसका विचार करें, और इस विचार करने में सहायक कोई है तो वो पूर्णता का लक्ष्य है। दृढ़ मोक्षेच्छा करे, किसी कीमत पे हमें मुझे छूटना ही है, चाहे सो हो जाए। क्या? चाहे सो हो जाए, कितना भी उपसर्ग आ जाए, परीक्षा आ जाए, आदि आदि उपाधि आ जाए। 128 में लिया कि नहीं? चाहे आयु एक समय भी बाकी रह जाए, दुर्निमित हो तो कुछ भी हो, ऐसा करना ही है, छूटना ही है, परिभ्रमण से मुक्त होना ही है। ऐसी दृढ़ मोक्ष इच्छा करें। ये दृढ़ मोक्ष इच्छा करने से पहचानने की योग्यता आ जाएगी। चलो ठीक, क्रम के प्रारंभ में पहला कदम रखने से ही योग्यता आ जाएगी पहचानने की। ऐसी बात है तो 254 में लिया ही है कि जो मोक्ष के लिए प्रयास करता है उसको आत्मस्वरूप की प्राप्ति की बहुत भावना होती है, तीव्र भावना होती है। उस भावना के वशात उसका निरंतर अवलोकन चलता है, अवलोकन से अपने दोष दिखने में आते हैं और संसार के पदार्थ में कहीं भी अल्प भी सुख की इच्छा नहीं रहती है और ज्ञानी को पहचान हो करके उसमें परमेश्वर बुद्धि आ जाती है। 254 में क्रम लिया कि नहीं किया, बस यहाँ उसको देर सवेर पहचान आ जाएगी, उतना प्रोसेस होगा तो पहचान आएगी। दृढ़ मोक्षेच्छा यानी पूर्णता का लक्ष्य के बाद इतना प्रोसेस होने से फिर पहचान आएगी। अगर पहचान नहीं आई तो पहचान के लिए तीव्र जिज्ञासा में रहना, वो भी मान लिया है कि पहचान नहीं होती फिर भी नहीं होती तो क्या। तीव्र जिज्ञासा में रहने से पहचान आए बिना रहेगी ये नहीं। सुगानी जी का जीवन चरित्र देखे तो उनको डायरेक्ट वो बात नहीं मिली थी कि तुमको सत्पुरुष के चरण में जाना चाहिए। वो कोई सुनाने वाले नहीं मिले थे, न कोई कहने वाले मिले थे, न वो बात पढ़ने में आई थी, लेकिन छूटने की भावना तीव्र हो गई थी। उतनी तीव्र हो गई, उतनी तीव्र हो गई कि एक विकल्प को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक विकल्प भी फांसी लगती थी गले में, उतने तीव्र दुख हो गया कि ये प्रतिबंध मुझे, और प्रतिबंध तो रहा नहीं था, समाज प्रतिबंध और कुटुंब प्रतिबंध तो कब का छूट गया था, विकल्प प्रतिबंध चालू था और वो भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। या तो विकल्प छूटे या तो मेरा प्राण छूटे, इस भूमिका में योग्यता में चरम सीमा में आ गए। पर उसमें आत्मधर्म मिला तो इस मार्ग को बताने वाले कोई है ऐसा अनुमान लगा और 600 माइल का मुसाफरी कर लिया। 600 मील मैंने 1000 किलोमीटर हो जाता है, 1000 किलोमीटर का मुसाफरी कर लिया, 900-950 तो होता ही है। वो जान नहीं, पहचान नहीं, भाषा समझे नहीं, कुछ नहीं था तो उनको सिखाना नहीं पड़ा कि तुमको सत्पुरुष के चरण में जाना है, ऐसा किसी ने उपदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये होता है कि ये बात सिखानी नहीं पड़ती। जिसको पानी की प्यास लगती है और ऐसी प्यास लगती है कि प्राण छूट जाए, उसको पानी ढूंढने का सिखाना पड़ता है क्या? कि तुम पानी ढूंढो वरना मर जाओगे, तो सिखाना नहीं पड़ता। ये तो अच्छी बात है, हमको सिखाने वाले मिलते हैं उनको तो बिना सिखाए भी अनुसरण हो गया, और यहाँ सिखाने वाले मिलते फिर भी अनुकरण अनुसरण नहीं होता है तो ये योग्यता की बलिहारी है और कुछ
नहीं है,
नहीं है। ये योग्यता का कारण है। हर जगह योग्यता का साम्राज्य है, जैसे जिसकी योग्यता बस।
इसकी योग्यता कम है इसलिए सिखाने वाले इसकी योग्यता कम है इसलिए सिखाने वाले मिलते हैं।
योग्यता कम हो या ज्यादा हो इससे कोई मतलब नहीं है, ज्ञानी चलते हैं मार्ग दिखाते जाते हैं। किसी के भाग्य में इसका योग होता है देख लेते हैं, अगर इसका योग होता है उनकी योग्यता नहीं है दिखाने वाले मिलते हैं, नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सब नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सब देखते हैं, ऐसा भी नहीं है, इसलिए इसका कोई नियम नहीं। इस मार्ग का आराधन किए बिना जीव ने अनादिकाल से परिभ्रमण किया है। जब तक जीव का स्वच्छंद रूपी अंधत्व है आया, दृढ़ मोक्षेच्छा करे इस विचार में अप्रमत रहे, मैंने पीछे लग जाए, अप्रमत रहे मैंने पीछे लग जाए, पूरा पीछे पड़ जाए, दूसरी को दूसरा कोई माथा में दूसरी कोई बात प्रवेश करे नहीं, इसके पहले एक ही बात, जहां तक ये नहीं हुए मेरा काम मुझे कोई चैन पड़ने वाली बात नहीं। तो मार्ग की प्राप्ति होकर अंधत्व दूर होता है। इसे निशंक मानिए, अंधत्व दूर होगा ही, स्वच्छंद मिटेगा ही, मार्ग की प्राप्ति होगी ही, उसमें शंका करने की गुंजाइश नहीं है, कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, एकदम अनुभव सिद्ध बात है। कैसी बात है? अनुभव सिद्ध बात है। अनादि काल से जीव उल्टे मार्ग पर चला है, इसको छोड़ करके जो मार्ग करके पसंद किया है वो सब उल्टा है, इसका वो मार्ग नहीं है, उन मार्ग है। क्या है? मार्ग नहीं है किंतु ये उन मार्ग है, इसका
अंदर तो और बढ़ता है, इससे और अंदर तो बढ़ा,
और अंदर तो बढ़ा, उन मार्ग पे चलने पर तो और दूर गया, यही काम हुआ है। यद्यपि उसने जप तप शास्त्र अध्ययन आदि अनंत बार किया है, करोड़ बार नहीं किया है, अनंत बार किया है, तथापि जो कुछ भी अवश्य करने योग्य था वह उसने नहीं किया, जिसे हमने पहले ही बताया है, हमने यही बताया इस वचनों में, वो नहीं किया, दूसरा सब कुछ कर लिया, और अपना जीवन देखने से ये पता चल जाएगा कि इस जीवन में भी हमने जो कुछ किया उसमें ये बाकी रह गया है, पहचान नहीं आई है, योग्यता नहीं आई है, बाकी तो करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, थोड़ा पूजा भक्ति भी करते हैं, थोड़ा दया दान भी करते हैं, जो भी मुमुक्षु के योग्य परिणाम है वो करते हैं, और जीवन चला जाता है, काम नहीं होता है, क्या कारण कि ये नहीं हुआ है, ये जीवन नहीं, अनंत जिंदगी ऐसी चली गई। अब इसके सबूत देते हैं, दो सबूत दिया है, एक सतयुग के प्रारंभ का और एक सतयुग के अंत का, क्योंकि चौथा आ रहा है उसमें धर्म बहुत हुआ, अनेक जीवों ने धर्म पाया, बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में धर्म की प्रभावना हुई थी, तो प्रारंभ में भी यही कारण से हुआ और अंत में भी यही कारण से हुआ, दो सबूत दिया है। पहला कि सुयोगडांग सूत्र में लिखा है ऐसा करके, ऋषभदेव भगवान ने जहां 98 पुत्र को उपदेश दिया है, ये 98 मोक्ष में गए थे, ऋषभदेव भगवान के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, 100 के 100 गए, वैसे तो 100 के 100 गए, लेकिन इतिहास भरत बाहुबली का मिलता है, 98 वाले का इतना इतिहास नहीं मिलता है, क्यों? तो वो बहुत फौरन चले गए, उसमें कोई घटना ही नहीं घटी, भरत महाराजा का तो चक्रवर्ती पद की पर भरत बाहुबली को ये भरत के साथ युद्ध हुआ, ये सब घटनाएं घटे, इनके तो कोई घटना ही नहीं घटी। वो बोलते नहीं थे, समोसरण में उपदेश सुनते थे, बोलते नहीं थे। तो किसी को डाउट हो गया, शंका हो गई कि ऐसे महान पुरुष के पुत्र कोई गूंगे थोड़े होते हैं जो तो बोले नहीं। इतना पुण्य लेकर आए हैं, तीर्थंकर के पुत्र है, वो तो गूंगे थोड़े होते हैं, बोलते क्यों नहीं है। उपदेश ही सुनते थे, सुनते थे और अंतर में उतारते थे, क्या करते थे, बाहर नहीं निकालते थे। अभी तो थोड़ा सुना थोड़ा पढ़ा बाहर निकालने लग जाते हैं, अंदर में नहीं जाता तो बाहर निकल जाता है। अंतर में उतारते थे, बोले तो उतना ही बोला कि हमको भगवती प्रवज्ञा ग्रहण करने की है, हमें संसार में कहीं भी कुछ करने का नहीं है, आपकी आज्ञा है वो हमने शिरोधार्य की है, हम तो आपके चरण में बैठ गए हैं, अभी उठने वाले नहीं है, जाओ दीक्षा ले लिया। तो भावलिंगी संत हो गए, उसी भाव में मोक्ष में निर्वाण पद में चले गए। निगोद में से आए थे, लंबा कोई 84 लाख युने में जन्म मरण नहीं करना पड़ा, मनुष्य होकर के निर्वाण पद में चले गए। ऐसे चरम शरीरी मोक्षगामी जो 98 पुत्र को उपदेश दिया था और मोक्ष मार्ग चढ़ाया है वसुदेव भगवान ने, वहां यही उपदेश दिया है। वहां कैसा उपदेश दिया है उसको 3 पंक्ति में लिखते हैं कि हे आयुष्य मानो, आप मनुष्य आयु भोग रहे हो, निर्वाण पद के अधिकारी हो, इस जीव ने इसे छोड़कर सब कुछ किया है। क्या छोड़कर? तो निश्चय से कहते हैं, वास्तव में खरेखर कहते हैं कि इस जीव ने सत्पुरुष के कहे हुए वचन अर्थात उपदेश को नहीं सुना। क्या हमने नहीं सुना है कि नहीं सुना? जा सुनने के बाद इसका अमलीकरण नहीं हुआ तो सुना ही नहीं, निकाल दिया, यहाँ से सुना यहाँ से निकल गया। अथवा भली भांति से उसे अपनाया नहीं, ग्रहण किया नहीं। और इसी को हमने मुनियों की सामायिक कही है, सद्पुरुष के उपदेश को ग्रहण करना यही सामायिक है, घंटा भर बैठ जाना वो सामायिक नहीं है, सामायिक पाठ बोल जाना वो भी सामायिक नहीं है। राजू भाई सामायिक बहुत कराते थे, 400-400 लड़के को सामायिक थी कि नहीं थी? बिल्कुल सामायिक नहीं थे। तो सामायिक के संबंध में एक भ्रांति थी, वो भ्रांति को छोड़ दिया, ये करने लायक नहीं है। सामायिक तो वो है कि जो सत्पुरुष को उपदेश को ग्रहण करके अंतर में उतार ले, यही सामायिक है। मुनियों के सामायिक के बराबर ही दिया उसने। उधर देखो ये सुयोगदान सूत्र में बात आई है, ऋषभदेव भगवान ने 98 पुत्र को मार्ग पर चढ़ाया है, उपदेश दिया है, इस तरह से उपदेश दिया है, इस तरह से मार्ग पर चढ़ाया है। जब सतयुग का प्रारंभ था और ऐसे पात्र जीव इनके समोसरण में थे तो उपदेश ही दिया, सत्पुरुष के वचन को अनुसरण करके अंतर में उतार लो। जो सत्पुरुष के वचन है वही श्री गुरु के वचन है, वही परम गुरु तीर्थंकर के वचन है, कोई अंतर इसमें नहीं है। और पूरे चतुर्थ काल में ऐसे ही उपदेश चला, और जिन भाग्यवंतों ने इस उपदेश का अनुसरण किया वो धर्म पा करके अपना कल्याण करने लग गए। आखिर में क्या हुआ, उसके आखिर में दो केवली रह गई है, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी है वो अंतिम केवली है, पहले गौतम स्वामी गए, फिर सुधर्मा स्वामी गए, फिर मथुरा से जम्बू स्वामी गए। तो मथुरा 84 कहते हैं ना, मथुरता चली थी, इसको 84 क्यों कहते हैं? तो के अगल बगल में 84 कोस में ये धर्म प्रभावना हुई थी मोक्ष की, इसलिए उसको मथुरा 84 कहते हैं। तो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को उपदेश देते हैं कि जिन्होंने सारे जगत का दर्शन किया है ऐसे भगवान महावीर जो हमारे परम गुरु थे, सुधर्मा स्वामी क्या कहते हैं जम्बू स्वामी को कि भगवान महावीर जो हमारे गुरु थे वो कैसे थे, सर्वज्ञ थे, सारे जगत का दर्शन कर लिया था, किसी की बात किसी भी बात से अनजाने नहीं थे, अनभिज्ञ नहीं थे, उसने हमें इस प्रकार कहा, हमारे गुरु ने तो हमको ऐसा कहा, इसलिए हम मोक्ष में जाएंगे, तुम भी सुन लो और तुम भी मोक्ष में चले जाओ जाओ। कि गुरु के अधीन होकर आचरण करने वाले अनंत पुरुषों ने मार्ग पाकर मोक्ष प्राप्त किया है, जाओ। गुरु अधीन रहे वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जो गुरु अधीन नहीं रहे वो मोक्ष को प्राप्त नहीं किया। क्षेत्र से अधीन रहे वो बात नहीं है, क्षेत्र से तो नजदीक रहेगा, भाव उल्टा चलेगा तो अधीन नहीं है, और क्षेत्र से दूर हो या समीप हो उसकी आज्ञा में रहने का जिसका निश्चय है वो तिर जाएगा। ये वास्तविक चरण कमल की उपासना है, यानी उसमें बात दूसरी रही है। ठीक है, जिसको श्री गुरु का सतपुरुष का उपदेश मिलता है और अपने को यहाँ मर्म स्थान में अंतरंग में पहुँचता है, उसके असर आती है और उसका अमलीकरण करने वो लग जाता है, उसको मालूम पड़ता है कि मेरा कल्याण अब होगा होगा और होगा ही। तो उनको इसका चरण रज माथे चढ़ाने का भाव आता है उनको उतने अपने उपकारी के प्रति उपकृत बुद्धि होती है कि उसके चरण रज वो माथे लगाएगा, इतना उपकार बुद्धि उसको आती है। तो क्या हुआ कि सही रूप में ऐसा हो किया किसी ने, हुआ किसी को, फिर इसकी कोई नकल करने लग जाने से कोई उपकार हो जाता नहीं है, तो फिर ये ट्रेडिशन हो गई कि चलो गुरु का चरण स्पर्श करो, उसको चरण रज को माथे लगाओ, ऐसा बात नहीं है क्या ऐसा बात
नहीं है,
नहीं है। ये वास्केप ना के वो तो कोई अच्छी रज होगी, सुखड़ बुखड़ का कोई पाउडर होगा, लेकिन ये तो चरण रज धूली जिसको हम मैलापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पानी में डाले तो पानी मैला होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो उसको उतना उपकार बुद्धि आता है, वो उपकार बुद्धि से ऐसी प्रक्रिया बाहर में होती है, इसको नहीं उपकार हुआ वो भी कोई नकल करने लग जाते हैं, इससे कोई काम नहीं होता है। मूल में वो बात होती है या हुई थी या होती है, ये बात है, ऐसा बनता है। तो फिर जो नहीं समझते वो ऐसे ही कर लेते हैं, जो समझते के करते उनका तो वास्तविक बात है, जो नहीं समझ के करते वो संज्ञा में करते हैं, दोनों को होती है। क्या है ध्रुव भाई भक्ति अंतरंग से,
लेकिन तो अंतरंग से
मुक्ति तो अंतरंग से उठती है, वो तो ठीक है, पहचान आएगी तो अंतरंग से उठे बिना रहेगी नहीं, तो बहुत स्वाभाविक है,
करनी नहीं पड़ती, हो जाती है,
बहुत स्वाभाविक है। ऐसा नहीं होना यह अस्वाभाविक है, क्या ऐसा नहीं होना यह अस्वाभाविक है और होना यह स्वाभाविक है, बिल्कुल। बाहर एक काम निकालने को जाते हैं ना दिल्ली के सेक्रेटरिएट में, कोई मंत्री के मंत्री से लाइसेंस लेना हो तो पहले इसके पीयून से लेकर के इसके सेक्रेटरी से लेकर के फिर वहां पहुंचना पड़ता है, हाँ, और सबको राजी रखना पड़ता है, और वो पीयून ढेड़ हो, भंगी हो, चमार हो, या प्रधान भी भंगी चमार हो, कितनी गरज करनी पड़ती है वहां, साफ 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 करके कुछ हिलाने लिखता लगता है कि नहीं लगता है, करोड़पति होता है वो भी, क्यों गरज है उसके, एक काम निकालना है तो उतनी गरज है, अभी अनंत जन्म मरण मिटाने के लिए कितनी गरज होती होगी, हिसाब लगा लेना, बस बात खत्म। आए थे ना अपने घनश्याम भाई मांगू के, बहुत भक्ति करते थे कृपालु देव की, तो उनको हर जगह वही दिखते थे, बोले कि भावनगर आए बस में बैठे तो बादल देखे, तो बादल पर कृपालु देव को बैठे हुए देखे हमने, क्या स्कूटर चलाते हैं तो लगते कि हमारे आगे चल रहे हैं या हमारे पीछे बैठ गए हैं, हर जगह वही दिखते हैं, तो क्या कृपालु देव सर्वव्यापक हो गए थे कि इनकी नजर में तो सर्वव्यापक हो गया, यहाँ से भगवान को सर्वव्यापक बोलने में आया है, वास्तव में भगवान सर्वव्यापक नहीं है, लेकिन जहां जहां नजर पड़ती है वहां वहां अपने उपकारी का दर्शन होता है, उसको सर्वव्यापकता हो गई ऐसा कहने में आता है, ये भी बनता है क्या ये भी बनता है, तो ये सहज स्वाभाविक होता है, ये बात तो करना पड़ता नहीं है या सीखना पड़ता भी नहीं है, ऐसा हो गया सिखाया नहीं जाता, ये हो जाता है। इस एक इसी स्थल में नहीं परंतु सब स्थलों और सब शास्त्रों में यही बात कहने का लक्ष्य है, मैंने इरादा है, लक्ष्य मैंने यहाँ इरादा है, सब स्थल में सब शास्त्र में यही बात कहने का इरादा है, इसका सूत्र है आणाए धम्मो आणाए तवो, आज्ञा वही धर्म है, आज्ञा वही तप है, बाहर में तो जो लोग तप करते हैं ना जैसे उपवास आदि करते हैं तो नहीं सुहाता है, ऐसी परिस्थिति को सहन करके भी तप करते हैं, लेकिन गुरु आज्ञा नहीं सुहाती हो ऐसा कभी बनता नहीं है, चाहे अपनी पसंदगी अपसंदगी की वहां कोई परिस्थिति नहीं होती कि मुझे पसंद है या नहीं है, ये बात वहां नहीं रहती, कहते हैं ना नो चॉइस
नो वॉइस,
नो वॉइस आवाज नहीं, इसके सामने कोई आवाज
नहीं,
बस जो आज्ञा है उसको उठा ली, उसमें कोई सहन करना नहीं सहन करना वो प्रश्न ही नहीं, उसी को तप कहने में आता है, और तप परम प्रेम से उपासनीय होता है, आर्त ध्यान के परिणाम से जो तप किया जाता है वो तप है ही नहीं।
जी
जी
तो
આખા દિવસ નિમિત્ત નું ઘૂંટણ કરે ત્યારે કેમ એ પ્રશ્ન નથી આવતો? ભૂખ લાગે ખાવા બેસી જાય, ઝપટ મારે બહુ ભૂખ લાગી હોય તો, તરસ લાગે ફટાફટ પાણી પીવી જાય, અહીંયા તો નિમિત્ત ઉઠતું નથી. અને આખો દિવસ કર્મના ઉદયમાં એટલે નિમિત્તમાં જોડાઈને કામ કરે 24 કલાક. એક સમય દેખા દો, એક સમય દેખા દો કે તમારે 24 ઘંટો મેં એક સમય બી બિના નિમિત્ત આધીન તું પ્રવૃત્તિ કરતે હો, એક સમય દેખા દો. હવે પહેલે નિમિત્ત બદલો, ઇસ તરહ સે બદલો પહેલે. જબ તુમ નિમિત્ત આધીન પડા હી હૈ ઓર દૂસરા કોઈ ચારા નહીં હૈ બચને કા, તો એક દફે નિમિત્ત કો બદલો, ફિર ઉપાદાન મેં આ જાઓગે. બિના નિમિત્ત બદલે ઉપાદાન મેં કભી આ સકોગે નહીં. ઘડા ઊંધા હૈ આડા હોગા ફિર સીધા હોગા, કોઈ આડા હુએ બિના સીધા હુઆ હો એક ભી ઘડા
કભી નહીં બને,
એ અસંભવ હૈ, અશક્ય હૈ, કભી હો સકતા
નહીં હૈ.
તો પહેલે આડે તો જાઓ એસા કહેતે હૈ, ઠીક. આડા હોના કહેતો કે નહીં, આડા નહીં હોના હૈ સીધા હોના હૈ, તો કે તુમકો સીધા હોના હી નહીં હૈ, એસી બાત હૈ. યહાં નિમિતાધીન દ્રષ્ટિ હોતી હૈ એસા જિસકો વિચાર હોતા હૈ બડે દુર્ભાગી હૈ, બડે દુર્ભાગી હૈ. ક્યુકિ યહાં ભી ઉસકો સરળપના નહીં રહા, ટેડા હો ગયા વહાં. આજ્ઞા કા આરાધન યહી ધર્મ, આજ્ઞા કા આરાધન વહી તપ. ये आचारंग सूत्र कहाँ से निकला? भगवान की वाणी और गौतम स्वामी गणधर देव के माध्यम से वो आचारंग सूत्र लिखा गया है. ये मूल सूत्र है, वो एगम जाने सो सम्वम जाने मूल सूत्र है. आणाए धवो आणाए तमो, ये मूल सूत्र है. बाकी एडिटेशन हुआ दूसरी बात है, मूल सूत्र कुछ रहता है उसमें. ये मूल सूत्र है भगवान का. तो क्या भगवान को उपादान की पता नहीं था? उपादान का उपदेश देने को भगवान को नहीं आता था तो ऐसा सूत्र दिया? हाँ, ये तो भगवान की भूल हो गई. हम तो उपादान वाले, भगवान की भी भूल काट सकते हैं, हाँ? कि यही स्वच्छंद है और कुछ नहीं है, इसी का नाम स्वच्छंद है. सर्वत्र महापुरुषों के कहने का यही लक्ष्य है, महा सभी महापुरुषों का कहने का यह इरादा है. यह लक्ष्य जीव की समझ में नहीं आया, अनंत काल अनंत बार सुनने पर भी समझ में नहीं आया. इसके कारणों में सबसे प्रथम कारण स्वच्छंद है. देखो क्या लिखा, क्यों समझ में नहीं आया कि स्वच्छंद रख कर अभिप्राय में स्वच्छंद रख कर सुना. भले न कहे, अपने तो जो क्रिया करनी है वही करेंगे, पूजा पहले करेंगे फिर स्वाध्याय करेंगे, करते हैं कि नहीं अपने यहां भी? पहला पूजा पछी स्वाध्याय, और स्वाध्याय चलता है उसी वक्त भी पूजा. गुरुदेव तो ठपका देते थे, इनको शुभभाव करने का भी समझ में आता नहीं है. ज्ञान तो कहां से होगा, लेकिन शुभभाव कौन सा बढ़िया होता है और कौन सा करना चाहिए वो भी उसको ज्ञान में समझ में आया
नहीं है.
उसका कारण, प्रधान कारण, मुख्य कारण स्वच्छंद है. और जिसने स्वच्छंद को मंद किया है ऐसे पुरुष के लिए प्रतिबद्धता दूर करने का सर्वोत्तम उपाय जो कोई है उसका उस पर से विचार करें. जिसको स्वच्छंद मंद हुआ है उसको चार प्रकार की प्रतिबद्धता है, लोक संबंधी माने समाज संबंधी, स्वजन कुटुंबी संबंधी, देहाभिमान रूप बंधन और संकल्प विकल्प रूप. ऐसे चार प्रकार के जो प्रतिबद्ध है ये बंधन को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय जो कोई है इसका इस पर से विचार करें, और यह विचार करते हुए जो कुछ योग्य लगे यह हमें पूछिए। लल्लू जी को कहते हैं कि चार प्रकार के प्रतिबंध दूर करने का विचार करें, और इस विचार करते हुए कुछ पूछने की जरूरत हो, आवश्यकता लगे तो हमें पूछिए, और इस मार्ग से यदि कुछ योग्यता प्राप्त करेंगे तो चाहे जहाँ से भी उपशम की प्राप्ति यानी उपशम सम्यक दर्शन होगा होगा और होगा। उपशम प्राप्त होने पर जिसकी आज्ञा का आराधन करें ऐसे पुरुष की खोज में रहे। तो वहाँ ऐसे सत्पुरुष नहीं हो तो इसकी खोज में रहना, ऐसा एक संकेत किया है। क्योंकि किसी को पता तो चला कि सत्पुरुष के चरण में रहना चाहिए, लेकिन सत्पुरुष हो तब तो उसकी खोज करनी पड़ती है। बाकी दूसरे सब साधन बाद में करने योग्य है, एक भी साधन पहले नहीं करे, बस सब बार पीछे रखे। विचार करने से इसके सिवा दूसरा कोई मोक्ष मार्ग प्रतीत नहीं होगा। अगर विकल्प से प्रतीत होता हो तो बताइएगा, ताकि जो कुछ योग्य हो वो आपको बताया जाए। दूसरा कोई मार्ग है नहीं, फिर भी तर्क उठे तो बोल देना, बता देंगे आपको। ऐसा करके लल्लू जी स्वामी को ये पत्र लिखा।